गणराज्य ईरान की आवाज।
रेडियो तेहरान के सभी श्रोतागण, जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, सदैव की भांति कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की पवित्र आयतों से कर रहे हैं। आज आप सूरह दहर की तीसरी से लेकर ग्यारहवीं आयतों तक की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी।
بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا
صدق الله العظيم।
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हमने मनुष्य को मार्ग दिखा दिया है, अब चाहे वो कृतज्ञ रहे या अकृतज्ञ। हमने काफिरों के लिए जंजीरें, तौक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। निश्चय ही भले लोग ऐसे प्याले से पिएंगे जिसमें काफूर की भली महक का मिश्रण होगा। वो एक स्रोत होगा जिससे अल्लाह के विशेष बंदे पिएंगे और जहां चाहेंगे उसे बहा कर ले जाएंगे। ईश्वर के ये बंदे मन्नत पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसका दंड व्यापक होगा और वे खाने की चाहत व आवश्यकता रखने के बावजूद उसे मोहताज, अनाथ और कैदी को खिला देते हैं और कहते हैं, हम तो केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए तुम्हें खिलाते हैं, अन्यथा न तुमसे कोई बदला चाहते हैं न आभार। हमें तो अपने पालनहार की ओर से एक ऐसे दिन का भय है जो अत्यंत क्रूर और लंबा होगा। तो ईश्वर ने उन्हें उस दिन की कड़ाई से बचा लिया और उन्हें ताजगी व प्रसन्नता प्रदान की।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है दोस्तों, सभा में आपका स्वागत है। आज बुधवार है, फरवरी की 28, शाबान की 18 और इस वंद माह की 9 तारीख। कार्यक्रमों में आप पहले विश्व समाचार सुनेंगे, विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। फिर हम आपको दो साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, आशा की किरण और आजकल। तो दोस्तों, ये थी रूपरेखा। कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता ने चुनाव को राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन बताया है। अब्दुल्ला यान कहते हैं कि इसराइली हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। अन्य का कहना है कि जानिए अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रसंघ का मानना है कि गजा में भूखमरी को टालना असंभव होता जा रहा है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि गजा में पश्चिम के हाथों जातीय सफाया अब इतना शर्मनाक हो गया है कि अमरीकी फौजी अफसर तक आत्मदाह कर रहा है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने पहली बार वोट डालने वाले हजारों नौजवानों और कुछ शहीदों के घर वालों से बुधवार को तेहरान में इमाम खुमैनी इमामबाड़े में मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान अपने संबोधन में चुनावों में राष्ट्र की भरपूर भागीदारी को, राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी और ईरान के कट्टर दुश्मनों को मायूस करने वाला तत्व बताया। वरिष्ठ नेता ने सबसे उचित उम्मीदवार की विशेषताएं बयान करते हुए कहा, जनता की भरपूर भागीदारी से आयोजित होने वाले चुनाव से मुश्किलों को दूर करने और देश के विकास का रास्ता समतल होता है। इस हिसाब से चुनाव देश का सिस्टम सही चलाने वाले स्तंभों में से एक है। इस्लामी क्रांति के नेता ने क्रांति से पहले ईरान के चुनावों में दिखावे के होने पर आधारित पहलवी शासन के कुछ अधिकारियों के लिखित बयानों की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्होंने इस बात को भी माना है कि चुनावों से पहले ही शाही दरबार में, यहां तक कि कभी कभी कुछ विदेशी दूतावासों में भी कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर दी जाती थी और बैलेट बॉक्सों से वही लिस्ट बाहर आ जाती थी।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यमन पर अमरीका और ब्रिटेन के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इन हमलों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये जोड़ी जानी शासन के हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रौंदने और विश्व सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए तैयार है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने यमन की राजधानी सना सहित यमन के कई इलाकों पर अमरीका और ब्रिटेन के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मनमाने और जोखिम भरे हमले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नियमों और सिद्धांतों और यमन की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि अमरीका और ब्रिटेन एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायनी शासन के युद्ध अपराधों और नरसंहार में शामिल हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के स्थान पर ज़ायनी शासन की सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देते हैं।
कुछ पश्चिमी सरकारें अब भी मानवाधिकारों को एक हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जर्मनी द्वारा इस्लामी गणतंत्र ईरान पर आरोप लगाने को इस देश की ओर से ज़ायोनियों के समर्थन पर पर्दा डालने के अर्थ में बताया। नासिर कलानी ने कहा कि एक ऐसी विडंबना है कि कुछ पश्चिमी सरकारें मानवाधिकारों का हनन करने वालों का खुला समर्थन करने के बावजूद मानवाधिकारों के रक्षक बनने का दावा करती हैं। उनका कहना था कि जर्मनी की सरकार मानवाधिकारों के समर्थन का दावा करने के बावजूद अवैध ज़ायोनी शासन का समर्थन करती है और उसके द्वारा फिलिस्तीनियों के विरुद्ध की जा रही मानवता विरोधी कार्रवाइयों की वो अनदेखी कर रही है। वो मानवाधिकारों को हथकंडे के रूप में प्रयोग करती है। वो मानवाधिकारों को दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने के लिए भी प्रयोग करती है।
हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया ने सभी फिलिस्तीनियों का आह्वान किया है कि मस्जिद उल अक्सा की सुरक्षा के लिए वे पवित्र रमजान के पहले ही दिन इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। इस्माइल हनिया ने बुधवार को अपने टेलीविजन संबोधन में कहा कि गजा में ज़ायनी शत्रु ने बहुत ही भयानक अपराधों के साथ ही जातीय सफाई का काम भी जारी कर रखा है। उनका कहना था कि शक्ति के असंतुलन के बावजूद फिलिस्तीनी शोधकर्ताओं ने ज़ायनियों के मुकाबले में ऐतिहासिक वीरता का प्रदर्शन किया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों ने इसराइली सेना पर यह आरोप लगाया है कि वो व्यवस्थित रूप से पीड़ित फिलिस्तीनियों तक सहायता पहुंचाने में रुकावटें डाल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गजा की पट्टी की कम से कम एक चौथाई आबादी भुखमरी से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। राष्ट्र संघ की ओर से मंगलवार को यह चेतावनी तब सामने आई जब उत्तरी गजा में सहायता सामग्री लेने के लिए इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों पर इसराइली सेना ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गजा युद्ध को शुरू हुए करीब 5 महीने होने वाले हैं। इस युद्ध में ज़ायोनी सेना के हाथों 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।
कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने गजा में ज़ायनी सेना के अपराधों पर रोक लगाने की मांग की है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने मंगलवार को पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रा के साथ मुलाकात में कहा कि दुनिया भूखमरी और उजाड़े जाने के जरिए फिलिस्तीनियों के नस्ल कुशी की गवाह है। इसी प्रकार कतर के अमीर ने कहा कि विश्व समुदाय गजा पट्टी में आम नागरिकों की सुरक्षा का समर्थन करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़कर फिलिस्तीनियों की मुश्किलों का समाधान निकालना होगा। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को कब्जे वाले इलाकों में हमास के ऑपरेशन के बाद से ज़ायनी सेना गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का जनसंहार कर रही है। गजा युद्ध में अब तक 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में अधिकांश संख्या बच्चों और महिलाओं की है।
पश्चिमी इराक के क्षेत्रों को अशांत बनाने की अमरीकी योजना को हश्दुशाबी ने नाकाम कर दिया है। इराक की संसद में सुरक्षा आयोग के एक सदस्य ने बताया है कि हश्दुशाबी ने पश्चिमी इराक में अमरीकी योजना को विफल बना दिया। वाद अल कुदवा ने कहा कि देश के स्वयंसेवी बल हश्दुशाबी के बहुत से सदस्य सीरिया से मिलने वाली इराक की सीमा के निकट तैनात हैं। उन्होंने इराक में आतंकवादियों के प्रवेश को 95% तक कम कर दिया है। उन्होंने बताया कि अमरीकी योजना ये थी कि पश्चिमी इराक के सीमावर्ती क्षेत्र को अशांत बनाकर वहां से आतंकवादियों को इराक में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को आसान बना दिया जाए। اسی امریکی یوجنا کو حشد الشعبی نے پوری طرح سے وفل بنا دیا۔ عراق کی سنسد میں سرکشا آیوگ کے سدسیہ کا کہنا تھا کہ پشچیمی عراق کے سیما ورتی کھیتروں پر حشد الشعبی کی اپستھتی بہت ہی مہتوپورن ہے، یہی کارن ہے کہ اس پر آئے دن امریکی یدھک ویمانوں کے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ الیکھنی ہے کہ عراق کے سوئم سیوی بل ارتھات حشد الشعبی اب بھی اس دیش کے آتنکی تتووں کے چھپنے کے گوپنی اڈوں کو تلاش کر کے اس کو نشٹ کر رہا ہے۔
بھارت کے سب سے عمر دراز سانسد اور سماج وادی پارٹی کے نیتا شفیق الرحمان برق کا منگلوار کو 94 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا۔ الپسنکھیکوں کی آواز کو سنسد اور سڑک پر بلند کرنے والے اور جیون بھر الپسنکھیکوں اور پچھڑوں کے ادھیکاروں کے لیے سنگھرش کرنے کے لیے مشہور دیش کے سب سے سینئر سانسد نے مراد آباد کے ایک نجی اسپتال میں انتم سانس لی۔ 4 بار ودھائک رہ چکے سماج وادی پارٹی کے سنبھل سے سانسد شفیق الرحمان برق 2019 میں 5ویں بار سنبھل سے سانسد چنے گئے تھے۔ وہ ایک مخر نیتا تھے اور بنا ڈرے اپنی بات رکھنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ سماج وادی پارٹی نے اپنے ایکس ہینڈل پر سنویدنا پرکٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سماج وادی پارٹی کے ورشٹھ نیتا اور کئی بار سانسد رہے برق صاحب کا ندھن بے حد دکھد ہے، ایشور ان کی آتما کو شانتی دے، شوک سنتپت پریوار جنوں کو اس اپار دکھوں کو سہن کرنے کی شکتی ملے۔
اور سبھا کے سماپن سے پورو مکھیا سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر۔ ورشٹھ نیتا نے چناؤ کو راشٹریہ شکتی کا پردرشن بتایا ہے۔ ودیش منتری عبداللہیان کہتے ہیں کہ اسرائیلی ہتوں کی رکشا کے لیے انتراشٹریہ سرکشا کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہنیا کا کہنا ہے کہ زایونی اپنے لکشوں کو کسی بھی شڈینت سے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سنیوک راشٹر سنگھ کا یہ ماننا ہے کہ غزہ میں بھکمری کو ٹالنا اب لگ بھگ اسمبھو ہوتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ راجنیتک چرچا۔ श्रोताओ आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा में। राजनैतिक चर्चा में हम बात करेंगे इस्लामी गणराज्य ईरान में होने जा रहे महत्वपूर्ण चुनावों की। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अगर अमेरिका का समर्थन न होता तो ज़ायोनी शासन 1 घंटे भी युद्ध जारी नहीं रख सकता था। उनका कहना है कि गजा पट्टी के मसले के बारे में अमरीका की धूर्तापूर्ण नीतियाँ जारी हैं। ये विषय भी कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा में शामिल रहेगा। भारत में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है, इस विषय पर हम एक रिपोर्ट आपको सुनाएंगे। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं इस्लामी गणराज्य ईरान के चुनावों से। اسلامی گنراجیہ ایران میں آگامی شکروار کو 12ویں سنسد اور 6ویں وشیشگ اسمبلی کے چناؤ آیوجت ہونے جا رہے ہیں۔ جائزہ سنیے سید میسم سے۔
پچھلے 45 वर्षों में इस्लामी गणतंत्र ईरान की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं और उपलब्धियों में से एक पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में 39 चुनावों का आयोजन रहा है। इस्लामी काउंसिल या संसद के 12वें सत्र और नेतृत्व विशेषज्ञों की सभा के 6वें सत्र के चुनाव शुक्रवार 1 मार्च को आयोजित होंगे। चुनाव से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक उन्हें सुरक्षित और तनाव मुक्त वातावरण में आयोजित कराना है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने शुक्रवार के चुनावों के संबंध में 4 रणनीतियां निर्धारित की हैं, जिनमें मजबूत भागीदारी, वास्तविक प्रतिस्पर्धा, वास्तविक सुरक्षित चुनाव और पूर्ण सुरक्षा शामिल है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के उप सुरक्षा अधिकारी और देश के चुनाव सुरक्षा मुख्यालय के प्रमुख सैयद मजीद मीर अहमदी ने घोषणा की है कि 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा बल चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए तैनात किए जा रहे हैं। ईरान में चुनावों की सुरक्षा पर प्रकाश डालने का एक कारण ईरान की जनसंख्या की संरचना है। ईरान जातीय और जनजातीय विविधता वाला देश है और चुनावों और लोकप्रिय भागीदारी में जातीय और जनजातीय पहलू प्रमुख हैं। हालांकि ईरान के पिछले 39 चुनावों में थोड़ी सी भी असुरक्षा दिखाई नहीं दी है, इसीलिए सुरक्षित माहौल में चुनाव कराना इस्लामी गणतंत्र ईरान की ठोस उपलब्धियों में से एक है। इस संबंध में एक चुनाव आयोजन के बाद इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने कहा था कि हमें वास्तव में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा और शांति के माहौल में चुनावों का आयोजन एक बड़ी उपलब्धि है। यहां तक कि जहां परस्पर विरोधी उद्देश्य हो, राजनीतिक मतभेद हो, दो शहरों के बीच अंतर हो, उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, वहां कहीं कोई कटु घटना नहीं घटी है। इस्लामी क्रांति के नेता हमेशा पूर्ण सुरक्षा में चुनाव कराने पर जोर देते रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण चुनाव के लिए उनके इच्छित कार्य से संबंधित है। उनका मानना है कि ईरान में चुनाव से एकता आनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मतभेदों से दुश्मनों के खिलाफ ईरानी राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये महत्वपूर्ण और ठोस उपलब्धि ऐसी स्थिति में हासिल की गई है जहां इस्लामी गणतंत्र ईरान के दुश्मनों ने एक तरफ चुनाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने और उस पर सवाल उठाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और भ्रम और असुरक्षा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की खुफिया एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार पिछले सितम्बर से दुश्मन अराजकता और असुरक्षा पैदा करके ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे थे जिससे 1 मार्च को चुनावों के आयोजन में बाधा उत्पन्न हो सके।
इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका गजा पट्टी के सिलसिले में धूर्ततापूर्ण नीतियों पर अमल कर रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका की मदद से ज़ायोनी शासन अपने भयानक अपराध जारी रखे हुए है। जायजा पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ठोस जानकारी के अनुसार अमेरिका क्षेत्र में अपनी छावनियों से ज़ायोनी सरकार के लिए हथियार भेजता है और इसराइल अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है। विदेश मंत्री ने गजा पट्टी के संबंध में अमेरिका के धूर्ततापूर्ण नीतियों की भर्त्सना की और बल देकर कहा कि अगर वाशिंगटन अपना सैन्य समर्थन बंद कर दे तो अति घृणकारी ज़ायोनी सरकार 1 घंटे भी जंग को जारी नहीं रख सकती। विदेश मंत्री ने जनेवा में अल-मायदीन टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि गजा और पश्चिमी किनारे में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में राष्ट्र संघ के क्रियाकलाप अस्वीकार हैं और इसी प्रकार अमेरिका द्वारा वीटो का प्रयोग किए जाने के कारण सुरक्षा परिषद भी अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रही है। कुछ महीने पहले एक ईरानी लड़की की मौत को लेकर राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद में काफी शोर शराबा और हंगामा हुआ था। विदेश मंत्री ने राष्ट्र संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि अब गजा में मानवाधिकार के हनन और इसराइल के युद्ध अपराधों का पता लगाने के लिए वास्तविकता खोजी समिति का गठन क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने राष्ट्र संघ के महासचिव के कुछ अच्छे कार्यों की ओर संकेत किया और कहा कि इन सब के बावजूद गुटेरेस अब तक गजा के लोगों के हित में कोई प्रभावी कार्य अंजाम नहीं दे सके हैं। विदेश मंत्री ने ज़ायोनी सरकार द्वारा अंजाम दिए जा रहे अपराधों के संबंध में दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई शिकायत की सराहना करते हुए बल देकर कहा कि यह साहसी कदम न्याय को व्यवहारिक बनाने के लिए है। اور اسلامی گنتنتر ایران راجنیتک پرچارک اور قانونی درشت سے اس قدم کا سمرتھن کرتا ہے اور وہ میدان سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی پرکار انہوں نے کہا کہ زانی سرکار نہ تو اپنے کسی بھی گھوشت لکش کو پراپت کر سکی اور نہ ہی حماس کو ختم کر سکی، نہ ہی حماس کو نرست کر سکی اور نہ ہی حماس کے پرمکھ یحییٰ سینوار کو گرفتار کر سکی۔ ودیش منتری نے کہا کہ اتی گھنکاری زانی سرکار غزہ میں بمباری اور نسلی صفائی کو جاری رکھے ہوئے ہے، پھر بھی وہ نہ تو بندیوں کے استھان کا پتہ لگا سکی اور نہ ہی انہیں آزاد کرا سکی۔ انہوں نے کہا کہ چھیتر کے کچھ دیشوں کے نیتا امریکی چھاونیوں کے میزبان ہیں اور کچھ اسلامی زمینیں زانی سرکار کے لیے ہتھیار بھیجنے کے استھان میں پرورتیت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ سے جو تصویریں پراپت ہو رہی ہیں وہ اس بات کی سوچک ہیں کہ چھیتر میں امریکہ کی جو سین چھاونیاں ہیں ان سے رات و دن تل ابیب کے لیے ہتھیار بھیجا جا رہا ہے۔ ودیش منتری نے کہا کہ نیتنیاہو جنگ کو وستریت کرنے اور اس جنگ میں امریکہ کو شامل کرنے کے پریاس میں ہیں، اس پرکار سے کہ اس یدھ میں امریکہ کی بھاگیداری زانی سرکار کے ویاپک سمرتھن سے ادھک ہو۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ابھی جنگ بند کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور بیان جاری کر کے جنگ کو وستریت کرنے ہیتو اپنی اچھا کی گھوشنا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جنگ کے وستریت ہونے کے خطرے سے بہت اچھی طرح اوگت ہیں اور امریکہ اور برٹن یمن پر حملہ کر کے جنگ کو وستت کرنے کی چیشٹا میں ہیں۔ ودیش منتری نے کہا کہ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ زانی سرکار کا لکشیہ غزہ کے لوگوں کو مصر کے سینا مرستھل کی اور پشمی کنارے کے لوگوں کو جارڈن کی اور پلائن کرنے پر بات کر دینا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
भारत के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई है क्योंकि उसके कई विधायक बागी हो गए हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
راجیہ سبھا چناؤں کے پریڑام گھوشت ہونے کے بعد ہماچل پردیش کی کانگریس سرکار 14 مہینے کے بعد سنکٹ میں گھر گئی ہے۔ یہ سنکٹ اس سمے اتپن ہوا جب کانگریس کے 6 اور 3 نردلیہ ودھائکوں نے بھاجپا پرتیاشی کے پکش میں متدان کیا، جس سے کانگریس اور بھاجپا کے امیدواروں کو برابر برابر ووٹ ملے، جس کے بعد پرچی سے ہار جیت کا فیصلہ ہوا۔ پرچی میں بھی کانگریس کے پرتیاشی ابھیشیک منو سنگھوی ہار گئے اور بھاجپا کے پرتیاشی ہرش مہاجن جیت گئے۔ ہماچل پردیش ودھان سبھا کا سطر آج آرمبھ ہونے سے پہلے بھاجپا نے دعویٰ کیا کہ کانگریس سرکار سدن میں بہومت کھو چکی ہے۔ جے رام ٹھاکر کے نیترتو میں بھاجپا ودھائکوں نے راجیہ سے ووٹنگ ڈویژن کرانے کی مانگ کی۔ کانگریس کے 6 باغی ودھائک جو راجیہ سبھا چناؤ میں ووٹنگ کے بعد ہریانہ کے پنچکولہ چلے گئے تھے، شملہ واپس لوٹ آئے۔ سدن کی کاروائی آرمبھ ہوتے ہی زوردار ہنگامہ ہوا اور ہنگامے کے بیچ اسپیکر نے بھاجپا کے 15 ودھائکوں کو سدن کی کاروائی سے نلمبت کر دیا اور سدن استھگت کر دیا۔ اسی بیچ راجنیتک سنکٹ اس سمے اور گہرا گیا جب کانگریس ودھائک اور راجیہ منتری وکرمادتیہ سنگھ نے بھی سکھو سرکار سے تیاگ پتر دے دیا۔ انہوں نے ایک سنواددتا سمیلن میں اپنے پتا ویر بھدر سنگھ کو یاد کیا اور کہا کہ ہماچل پردیش ودھان سبھا کا پورا چناؤ ان کے نام پر لڑا گیا، جس کے کارن ہماچل پردیش میں کانگریس کی سرکار بنی۔ ان کی مورتی لگانے کے لیے 2 گز زمین نہیں دی گئی۔ उन्होंने राज्य सभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जहां तक हो सका हमने सरकार का पूरा समर्थन किया, मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे कामकाज में हस्तक्षेप किया गया और मुझे अपमानित किया गया। उन्होंने आगे कहा,
हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
असंतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हो गया है, लेकिन कांग्रेस का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि बहुमत उनके पास है और उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी।
मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी स्थितियाँ है वहाँ हमारी मेजोरिटी है, और ये भी ना सोचे कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं।
हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक खींचतान के बीच आज ध्वनी मतों से बजट पास हो गया और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुना, जिसे पेश किया अहमद अब्बास ने। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें लिख भेज सकते हैं। आप अपने विचारों को हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो दोस्तों, अब पेश है सभा का अगला कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि जो इंसान महामुक्तिदाता का सच्चा इंतजार करने वाला बनना चाहता है, वो न केवल दूसरों पर अत्याचार नहीं करता, बल्कि अत्याचार से पीड़ित लोगों की मदद करता है। ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान मजलूम है, अत्याचार से पीड़ित है, वो मुसलमान भी हो। नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। इस्लाम महान ईश्वर का धर्म है और महान ईश्वर के धर्म में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस्लाम धर्म अत्याचार और अत्याचारी से बेजारी की शिक्षा देता है। जो इंसान दूसरों पर अत्याचार करता है और अत्याचारी का साथ देता है, उसे अपने ईमान और इस्लाम पर पुनर्विचार करना चाहिए।
अत्याचार केवल ये नहीं है कि आप किसी की कोई चीज अन्यायपूर्ण ढंग से ले लें या वो आपकी कोई चीज ताकत के बल पर छीन ले, बल्कि ये भी जुल्म व अत्याचार है कि आप अपनी गलती का दोष किसी दूसरे के सिर पर मर दें या अपना काम किसी दूसरे से करा लें। जो लोग अपना काम दूसरों से करा लेते हैं, ये काम अपने सिर का बोझ दूसरों के सिर पर लाद देने के समान है और ये भी जुल्म है। इसी प्रकार अगर कोई गलत कार्य या बात कर रहा है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो ये भी गलत व अत्याचार है।
जो इंसान महामुक्तिदाता का सच्चा प्रतीक्षक बनना चाहता है, वो न केवल किसी पर अत्याचार नहीं करता है, बल्कि जो भी दूसरों पर अत्याचार करता है उसका वो विरोध करता है और ये नहीं देखता है कि अत्याचारी कौन है। अगर कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है اور دوسرا انسان یہ سوچ کر چپ ہو جاتا ہے کہ اتیاچاری میرا بھائی یا دوست ہے، تو اس پرکار کا مون دھارن کرنے والا کبھی بھی مہامکتی داتا کا سچا انتظار کرنے والا نہیں بن سکتا۔ اتیاچار اور اتیاچاری سے بیزاری مہامکتی داتا کے ظہور کا انتظار کرنے والے کی ایک مہتوپورن وشیشتا ہے۔
اتیاچار اتیاچاری سے بیزاری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مہامکتی داتا کے ظہور کا انتظار کرنے والا ہی ہو، بلکہ جو صحیح ارتھوں میں انسان اور مسلمان ہوگا وہ انیائے اور انیائی سے بیزاری کرے گا، کیونکہ اسلام دھرم کی جیوندائک شکشاؤں میں سے ایک انیائے سے دوری و اس سے پرہیز ہے۔ اتیاچار وہ بری چیز ہے جسے کبھی بھی کسی سبھیہ سماج پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی نظر میں سمست انسان انسانیت کی درشٹی سے برابر ہیں، چاہے ان کا سمبندھ کسی بھی جاتی اور دھرم سے کیوں نہ ہو۔ اسی پرکار اسلام میں منشیہ ہونے کی درشٹی سے مہیلا اور پروش برابر ہیں، کسی کو کسی پر وریتا نہیں ہے، چاہے کوئی کالا ہو یا گورا، دھنی ہو یا نردھن، غلام ہو یا آزاد۔ اسلام میں شریشتتا کا ماپدنڈ تقویٰ ہے، جس کا بھی تقویٰ زیادہ ہوگا مہانیشور کی نظر میں اس کا ستھان اتنا ہی اونچا و شریشت ہوگا۔ اگر کسی کالی داسی کا تقویٰ گورے، امیر اور آزاد انسان سے زیادہ ہے تو مہانیشور کی نظر میں اس کا مہتو ادھک اور افضل ہے۔
آشا کی کرن۔ مانوتا کے موکش داتا امام مہدی علیہ السلام پر سٹیک بحث پر آدھارت کارکرم آشا کی کرن۔ ہر ہفتے بدھوار کو
اسلام دھرم کی شکشاؤں کے انسار جو انسان مہامکتی داتا کا سچا پرتیکشک بننا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کسی پر اتیاچار نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ سے کام نہیں لے گا، وہ کسی کو کالے گورے یا دھنی نردھن کی درشٹی سے نہیں دیکھے گا۔ یعنی سب سے پہلے وہ اپنی سوچ اور آستھا کو اسلامی بنائے گا اور اس کے بعد مہامکتی داتا کا سچا پرتیکشک بننے کی کامنا اور اس کے لیے پریاس کرے گا۔
جب مہامکتی داتا کے ظہور کی بھومیکا پرشست ہو جائے گی تو آپ کا وشو ویاپی مہا آندولن پوتر نگر مکہ سے آرمبھ ہوگا، جس کا ادیش پوری دنیا میں شانتی و سرکشا اور نیائے کی استھاپنا ہے۔ پوری دنیا سے اتیاچار اور اتیاچاریوں کا انت ہو جائے گا، کیونکہ اتیاچار اور اتیاچاریوں کے انت کے بنا پوری دنیا میں نہ تو شانتی استھاپت ہوگی اور نہ ہی سرکشا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پورا کمرہ ٹھنڈا و شیتل رہے تو سب سے پہلے کمرے میں جل رہے الاؤ کو بجھا دے گا، انیتا کبھی بھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔
مہامکتی داتا کی وشو ویاپی سرکار کافی پریاس کے بعد استھاپت ہوگی، کنتو مہامکتی داتا کے وشو ویاپی آندولن کے بارے میں کچھ پرشن ہیں۔ اس سمبندھ میں ایک پرشن یہ ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے، دنیا میں کتنے دیش اور لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ اور سرکاریں بھید بھاؤ کو ختم کیے جانے کی دھر ورودھی ہیں، کیونکہ اگر بھید بھاؤ اور لوگوں کا شوشن ختم ہو جائے گا تو ان لوگوں اور سرکاروں کا آدھیپت و ورچس بھی ختم ہو جائے گا، اور اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے وہ مہامکتی داتا کے وشو ویاپی آندولن کا کھل کر ورودھ کریں گے اور اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں اتپن کر سکتے ہیں کریں گے۔ ان چیزوں کے درشٹیگت پرشن یہ ہے کہ سموچی دنیا کس طرح مہامکتی داتا کے نیانتر میں آ جائے گی۔
اس سمبندھ میں سب سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مہامکتی کے ظہور کے بعد چاروں طرف کیول جنگ ہی جنگ ہوگی اور لوگوں کا رکت پات ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مہامکتی داتا اپنے ظہور کے بعد دیشوں اور سماجوں پر نینترن کرنے سے پہلے وہاں کے لوگوں اور سرکاروں کو ایشوری آدیشوں کو سویکار کرنے کا نمنترن دیں گے اور لوگوں کو اپنے اچھ مانوی ادیشوں سے اوگت کرائیں گے۔ جنگ سے پہلے جس طرح پیغمبر اسلام اور دوسرے معصوم اماموں کی جو شیلی تھی، وہی شیلی مہامکتی داتا کی بھی ہوگی، کیونکہ مہامکتی داتا واسطو میں سمست ایشوری دوتوں کے پرتنیدھی ہیں۔ और उनकी शैली ईश्वरीय दूतों की शैली से भिन्न नहीं होगी। पूरी दुनिया के अधिकांश लोग किसी प्रकार की लड़ाई और रक्तपात के बिना महामुक्तिदाता के ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे और वे न केवल अपने समय के इमाम के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे बल्कि उनके निमंत्रण को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग उनके निमंत्रण को दिलो जान से कबूल करेंगे।
दोस्तों, महामुक्तिदाता के ईश्वरीय निमंत्रण को लोग बड़ी तेजी से कबूल करेंगे। उसकी एक महत्वपूर्ण वजह यह होगी कि उस समय चारों तरफ अन्याय व अत्याचार का बोलबाला होगा और दुनिया में लोग व्याप्त अत्याचार व अन्याय व अशांति से थक चुके होंगे और महामुक्तिदाता के आंदोलन को अपने दिलों की आवाज समझकर उसे स्वीकार करेंगे और महामुक्तिदाता मानव समाज को अत्याचार व अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए ही जहूर करेंगे।
महामुक्तिदाता के विश्वव्यापी आंदोलन का वही सरकारें और लोग विरोध करेंगे जो न्याय, बराबरी और लोगों की भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति को अपने अवैध हितों के खिलाफ समझेंगे और वे इमाम जमान अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। पवित्र कुरान इस प्रकार के लोगों को काफिरों का नेता और दिग्भ्रमित कहता है और ऐसे लोगों से जंग की जाएगी। महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह बकरा की आयत नंबर 193 में कहता है, उनसे जंग करो ताकि फितना व बुराई बाकी न रहे और धर्म ईश्वर से विशेष है।
महामुक्तिदाता के विश्वव्यापी महाआंदोलन के बारे में एक अन्य सवाल यह है कि क्या उस समय भौतिक दुनिया के संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा या केवल ईश्वरी ताकत से लाभ उठाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में कहा जाता है कि इमाम जमान अलैहिस्सलाम के विश्वव्यापी महाआंदोलन के दौरान भी दुनिया के संसाधनों से लाभ उठाया जाएगा और महान ईश्वर भी मदद करेगा। रोचक बात यह है कि जब महान ईश्वर अपने छोटे से छोटे बंदे की मदद करता है तो वो महामुक्तिदाता की सहायता उत्तम ढंग से करेगा। महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि जो उसके धर्म की सहायता करेगा वो उसकी सहायता करेगा।
पवित्र कुरान की सहायत से ये बात भली भांति स्पष्ट है कि महान ईश्वर के धर्म की सहायता केवल आकांक्षा करने से नहीं होगी। इसके लिए इंसानों को, विशेषकर उनके जुहर की प्रतीक्षा करने वालों को प्रयास करना होगा। महामुक्तिदाता महान ईश्वर के धर्म की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे और पवित्र कुरान की रोशनी में महान ईश्वर ने कहा है कि जो उसके धर्म की स्थापना के लिए प्रयास करेगा वो उसकी मदद करेगा। पवित्र कुरान की आयत की रोशनी में महान ईश्वर उस इंसान की सहायता करेगा जो उसके धर्म के प्रचार, प्रसार और उसकी स्थापना के लिए प्रयास करेगा। इसी प्रकार पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि हमारे कायम का समर्थन महान ईश्वर करेगा, परंतु ये मदद कैसी होगी, इसका जवाब इतिहास पर एक नजर डालने से मिल जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महान ईश्वर ने पैगंबरों को इंसानों के पथ प्रदर्शन के लिए भेजा और उन्हें चमत्कार देकर उनकी सहायता की।
महान ईश्वर ने चमत्कारों के अलावा अपने पैगंबरों की मदद की है। जंगे बद्र की मिसाल सामने है। जंगे बद्र काफिरों से लड़ी जाने वाली पहली जंग है। महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह आल इमरान की आयत नंबर 124 में और आयत नंबर 125 में कहा है, हमने फरिश्तों का लश्कर भेजकर उनकी अर्थात पैगंबर इस्लाम की मदद की। विभिन्न हदीसों व रवायतों में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि पैगंबर इस्लाम की भांति महान ईश्वर फरिश्तों का लश्कर भेजकर महामुक्तिदाता की भी मदद करेगा।
महान ईश्वर की मदद का एक तरीका यह है कि वो दुश्मनों के दिलों में भय डाल देता है। ये वही बात है जिसका उल्लेख महान ईश्वर ने सूरह आले इमरान के आयत नंबर 151 में किया है। महानेश्वर इस आयत में कहता है, शीघ्र ही हम काफिरों के दिलों में भय और रोब डाल देंगे, जो किसी प्रमाण के बिना ईश्वर की समतुल्य करार देते हैं, और उनका ठिकाना नरक है, और अत्याचारियों की जगह नरक कितना बुरा ठिकाना है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि महान ईश्वर दुश्मनों के दिलों में भय उत्पन्न करके महामुक्तिदाता की मदद करेगा और उन्हें विजयी बनाएगा।
यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि जब महान ईश्वर दुश्मनों के दिलों में भय व रोग उत्पन्न कर देगा तो दुश्मनों के बहुत से सैनिक लड़ने से परहेज करेंगे और वे लड़ाई के बिना महामुक्तिदाता के विशेष बहादुर साहसी और शूर वीर सैनिकों के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि अगर 20 धैर्यवान मोमिन होंगे तो 200 काफिरों से जीत जाएंगे और अगर 100 होंगे तो 1000 काफिरों से जीत जाएंगे।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है दोस्तों। कार्यक्रम था आशा की किरण, जिसे पेश किया मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी ने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, parstoday.ir/hi। तो दोस्तों, अब सभा के समापन से पहले हम पेश करने जा रहे हैं सभा का अंतिम कार्यक्रम।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और अख्तर रिजी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, किसी भी देश के भीतर वस्तुओं के अत्यधिक आयात को रोकने के साथ ही राष्ट्रीय उत्पादन या स्वदेशी निर्माण का समर्थन करना वो विषय है जिसको उत्पादन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक नीतियों एवं औद्योगिक नीतियों के एकीकरण के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। ये वो मुद्दा है जिस पर इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कई बार बल दे चुके हैं। देश के भीतर भ्रष्टाचार और विभिन्न वस्तुओं की तस्करी वो चीजें हैं जिनको अर्थव्यवस्था की गंभीर चुनौतियों में शामिल किया गया है।
ये विषय जहां पर एक ओर देश के व्यापारिक वातावरण को दूषित करता है, वहीं पर इस मुद्दे ने विदेश में देश की अर्थव्यवस्था की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस काम ने विदेशी निवेश के प्रति आकर्षण और विदेशी निवेशकों द्वारा जोखिम उठाने की संभावना को कम कर दिया है। ईरान की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के हानिकारक और विनाशकारी कारकों के विरुद्ध संघर्ष के लिए देश की तीनों पालिकाओं के बीच बहुत निकट का सहयोग जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है कि इन समस्याओं से मुकाबला करने की जितनी अधिक इच्छा शक्ति होगी, उसी अनुपात में देश के भीतर घरेलू उत्पादन की वृद्धि के लिए भूमिका प्रशस्त होती जाएगी।
इस विषय का महत्व इतना अधिक है कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने न्याय की स्थापना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष को बहुत ही जरूरी बताया है। इस प्रकार की घटनाओं से बहुत गंभीरता एवं कानूनी ढंग से निपटने का अच्छा परिणाम सामने आता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने वालों, तस्करी करने वालों या फिर माफियाओं का पता लगाकर इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध यदि कानूनी ढंग से निपटा जाए तो इस तरह के लोग आसानी से ये काम नहीं कर पाएंगे। जब तस्करों पर नकेल कस दी जाएगी तो वो आयातित सामानों के माध्यम से घरेलू मंडियों पर हमला करने की अनुमति नहीं देंगे।
दोस्तों, यदि हम आयात आधारित आर्थिक प्रणाली से उत्पाद आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमको समस्त राष्ट्रीय सुविधाओं और क्षमताओं का उपयोग करके उत्पादन क्षेत्र को अधिक से अधिक मजबूत करना होगा। ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, तस्करी और माफिया के विरुद्ध संघर्ष उत्पादन की वृद्धि के लिए जिम्मेदार संस्थानों के मूल कर्तव्य में शामिल है। इसका अर्थ ये है कि इन कामों को किसी भी हालत या किसी भी तरह की परिस्थितियों में अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि गैर कानूनी काम करने वालों को उपेक्षित करने से बहुत नुकसान होता है। पिछले दशकों के दौरान वस्तुओं और मुद्रा की तस्करी से निपटने के विषय पर विशेषज्ञों द्वारा बल दिया जाता रहा है।
तस्करी के आंकड़ों की समीक्षा करने से पता चलता है कि इस प्रकार की खतरनाक घटना से निपटने के लिए इससे संबंधित संस्थाएं उसको सीमित करने में अक्षम रही हैं। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष मुद्रा और वस्तुओं की तस्करी लगभग 12 से 25 अरब डॉलर तक होती है। वस्तुओं की तस्करी मुद्रा स्फीति और उत्पादन वृद्धि पर अंकुश लगाने का काम करती है। ये इन लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डालती है। सामान्यतः वस्तुओं की तस्करी में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसके अंतर्गत तो उस विदेशी मुद्रा को देश से बाहर ले जाया जाता है जो मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित नहीं है।
इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तस्करी जैसी बुराई से हमेशा पारंपरिक ढंग से ही निपटा जा सकता है। केवल पुलिस की कार्रवाइयां तस्करी जैसी बुराई को समाप्त करने में सक्षम नहीं है। ये एक वास्तविकता है कि तस्करी के विरुद्ध संघर्ष में इसे भौतिक ढंग से निपटने के अतिरिक्त कुछ ऐसी योजनाबंदी की जानी चाहिए जिससे तस्करी की वस्तु को गैर लाभकारी बनाया जा सके। दूसरे शब्दों में, इसको तस्कर के लिए बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाली चीज के रूप में नहीं होना चाहिए।
दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब तक तस्करी एक लाभदायक काम रहेगा उस समय तक इसके समूल विनाश के बारे में सोचना भी बेकार है। इस संदर्भ में मोबाइल फोन रजिस्ट्री योजना का उल्लेख किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस काल में इस प्रकार के उपाय अपनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमको ये भी जानना चाहिए कि उचित बाजार प्रबंधन तथा सही प्रकार की व्यवसायिक नीतियों को अपनाया जाना उत्पादन क्षेत्र को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी व्यापारी या देश के लिए बड़ा उपभोक्ता बाजार अर्थव्यवस्था के वास्तविक भाग के रूप में घरेलू उत्पादन की समृद्धि के लिए एक सुनहरा अवसर है।
ये भी एक हकीकत है कि अन्य सारे ही क्षेत्रों की भांति घरेलू उत्पाद के बनाए जाने के क्षेत्र में कानूनी निगरानी उपकरणों का बहुत ही कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान समय की उतार चढ़ाव की घटना को देखते हुए ये विषय बहुत अधिक महत्व रखता है। इस प्रकार के हालात में कुछ व्यापारी जमाखोरी का सहारा लेते हुए बिना कानून के मूल्यों को बढ़ाकर मंडियों पर अकारण ही मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाते हैं। इस तरह से वे नुकसान को बढ़ा देते हैं। ये बात भी सही है कि बाजार प्रबंधन और उचित व्यावसायिक नीतियों को अपनाना उत्पादन के क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एक बड़ा उपभोक्ता बाजार को अर्थव्यवस्था के वास्तविक भाग के रूप में घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि घरेलू उत्पादन के लिए उत्पाद के क्षेत्र में दूसरे अन्य सारे ही क्षेत्रों की भांति कानूनी नियमों का बहुत ही कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। उत्पादन में उतार चढ़ाव की घटना की स्थिति में इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन हालात में बहुत से लोग जमाखोरी का सहारा लेते हैं, वे बिना किसी भी डर और नियम के मूल्यों को बढ़ा देते हैं। इस काम की स्थिति में मंडी या बाजार में मनोवैज्ञानिक डर जैसे हालात पैदा हो जाते हैं जिससे लोगों के भीतर कीमतों के बढ़ने का भय व्याप्त हो जाता है। ऐसे में नुकसान बढ़ने लगता है। जब ऐसा होने लगे तो फिर न्यायपालिका के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं को बाजार में विघ्न डालने वाले कारकों के विरुद्ध कठोर और दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और बाजार में स्थिरता आती है। ऐसे में खरीदार और विक्रेता दोनों ही चिंता मुक्त हो जाते हैं।
अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में से एक का नाम है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। इस सिद्धांत को एक अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने पेश किया था। उनका ये मानना था कि कोई भी देश लाभ वाले उद्योगों पर अपना ध्यान केंद्रित करके उच्चतम आर्थिक विकास हासिल कर सकता है। ब्रिटेन में आयातित गेहूं पर वाणिज्यिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए डेविड ने अपने सिद्धांत का प्रस्ताव पेश किया था। उनका कहना था कि ब्रिटेन को विश्व के अन्य देशों से सस्ते तथा उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हालांकि वस्तुओं के व्यापार में सामान्यतः तुलनात्मक रूप में लाभ तो होता ही है।
व्यापार विशेषकर निर्यात को सरल बनाने में आधुनिक तकनीक की भी बहुत अहम भूमिका होती है। उत्पादन वृद्धि की रणनीति के एक भाग का मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात को मजबूत करना है जिनसे हमारे देश को तुलनात्मक रूप में लाभ होता है। ये बात उल्लेखनीय है कि जिन चीजों के व्यापार में ईरान को तुलनात्मक रूप में लाभ मिलता है उनके संदर्भ में कुछ कामों का किया जाना बहुत ही जरूरी है, जैसे टैक्स के संबंध में कुछ छूट देना, बिचौलियों या दलालों को बीच से हटाना, पैकिंग प्रणाली को अधिक सुगम बनाना और निर्यात को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जितने काम किए जा सकें उनको करते रहना चाहिए।
व्यापार को बढ़ावा देने और उसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आर्थिक कूटनीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में विश्व के देशों के व्यापार को मजबूत बनाने, विदेशी निवेश को बढ़ाने और राष्ट्रीय हितों की दिशा में नियमों को बदलने के लिए जिस नीति का प्रयोग किया जाता है उसको वर्तमान समय में आर्थिक कूटनीति कहा जाता है। एक हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए देशों द्वारा जिन साधनों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वहीं आर्थिक कूटनीति होती है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم.